अर्पा रेडियो से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भारतीय प्राचीन मनीषा। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं डॉक्टर रोहित सेठ से आध्यात्मिक संदेश।
नमस्कार। प्रत्येक आत्मा शांति की खोज कर रही है। वह अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। वह कोई भी हो, जलीय जीवों से लेकर इंसान के उच्चतम रूप तक, चींटी से लेकर प्रकृति के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी तक, अर्थात इस ब्रह्मांड के पहले प्राणी तक, हर कोई शांति की खोज कर रहा है। यही मुख्य उद्देश्य है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण चेतना में है वही एकमात्र शांत व्यक्ति है, क्योंकि उसकी कोई मांग नहीं है। यह उस व्यक्ति की विशेष योग्यता है जो कृष्ण चेतना में है। वह अकामह है। अकामह उन लोगों को संदर्भित करता है जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनके पास पूछने के लिए कुछ नहीं है और जो पूरी तरह से शांत हैं। ये वो भक्त हैं जिनकी चेतना ईश्वर में स्थित है। तो फिर बाकी लोग कौन हैं? अन्य सभी लोगों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग उन लोगों का है जो भौतिक सुख और भोग में लगे हुए हैं, जो लोग खाना पीना, मगन रहना और आनंद लेना चाहते हैं। शरीर के अनुसार भोग के विभिन्न तरीके हैं। उनका मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को प्रसन्न करना है। अगला वर्ग उन लोगों का है जो अर्थ संतुष्टि से थके हुए या निराश हैं और इसलिए इस भौतिक उलझाव से मुक्ति चाहते हैं। और फिर ऐसे लोग हैं जो ज्ञान की तलाश में लगे हैं और इस बारे में अटकलें लगाते हैं कि निरपेक्ष सत्य क्या है। इनकी भी दो श्रेणियां हैं। ऐसे लोग जो भावना भोग चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं। मोक्षवादियों की भी कुछ इच्छा होती है। वह है इस भौतिक उलझाव से मुक्त होने की इच्छा। फिर योगी होते हैं। वे रहस्यवादी पूर्णता की खोज में लगे रहते हैं। आठ प्रकार की रहस्यवादी पूर्णताएं हैं जो सबसे छोटा बनने की क्षमता प्रदान करती है, या सबसे भारी बनने की, या कुछ भी इच्छाएं प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। साधारण व्यक्ति जो अर्थ संतुष्टि में लिप्त होते हैं और जो मोक्षवादी होते हैं, या जो रहस्यवादी पूर्णता की प्राप्ति में लिप्त होते हैं, उनकी कुछ मांगें होती हैं। लेकिन भक्तों का क्या है? उनकी कोई मांग नहीं। वे तो बस ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। वे ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यही उनकी संतुष्टि है। यदि ईश्वर चाहते हैं कि भक्त नरक में जाए तो वे नरक में जाने के लिए तैयार हैं, और अगर ईश्वर कहते हैं तुम मेरे पास आओ तो वे वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। उनकी कोई मांग नहीं है। यही परफेक्ट स्टेज है। इसलिए एक व्यक्ति जो ईश्वर के प्रति सचेत है, वह प्रभु से प्रार्थना करता है, मैं कब आपके विचारों या आपकी सेवा में पूरी तरह से लीन हो जाऊंगा? आपके विचार केवल अमूर्त मनगणंत अटकलें नहीं हैं। यह विचार का एक व्यवहारिक तरीका है। इस तरह से मैं शांतिपूर्ण हो जाऊंगा। सभी मानसिक मनोदशा, जैसे कि मैं यह चाहता हूँ, मैं वह चाहता हूँ, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अन्य सभी लोग जो ईश्वर चेतना में नहीं हैं, वे दिशाहीन हैं। वे अपने स्वयं के मार्गदर्शक हैं। जो व्यक्ति ईश्वर भावना भावित है, ईश्वर उसके सच्चे मार्गदर्शक हैं, इसलिए उसे कोई डर नहीं है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा अपने माता पिता की देखरेख में रहता है तो उसे कोई डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वह मुक्त हो जाता है, वह कई बाधाओं का सामना करता है। इसी तरह जब कोई पूरी तरह से मानसिक रूप से मुक्त हो जाता है और 2400 घंटे ईश्वर चेतना में अपना 100% देता है तो वह एक बार में शांत हो जाएगा। यही शांति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो लोग सचेत हैं क्योंकि उनकी कोई मांग नहीं है, वे वास्तव में शांत हैं। जो लोग भोग, मोक्ष और यौगिक रहस्य पूर्णता में लिप्त होते हैं, वे हमेशा चिंता से भरे होते हैं। जब तक व्यक्ति चिंता से भरा होता है, तब तक यह जानना चाहिए कि वह अभी भी भौतिक प्रकृति की चपेट में है। और जैसे ही कोई सभी चिंताओं से मुक्त होता है, उसे पता होना चाहिए कि वह मुक्त हो गया। भक्त प्रहलाद केवल 5 साल के थे, एक आश्रित बच्चे, लेकिन क्योंकि वे भगवान के सच्चे भक्त थे, उनके पिता ही उनके दुश्मन बन गए। यही दुनिया का दस्तूर है। जैसे ही कोई भगवान का भक्त बनता है, उसे बहुत सारी बाधाएं मिलती हैं, लेकिन वे बाधाएं किसी के रास्ते में बाधा नहीं बनेंगी। हमें चेतना के प्रति सचेत रहने के लिए हमेशा व्यक्तिगत रूप से तैयार रहना चाहिए, अन्यथा केवल माया का राज्य है, भ्रम है। जैसे ही हमें भक्ति में अग्रसित होते हुए माया देखती है, माया हमें हराने की कोशिश करेंगी। जैसे ही कोई ईश्वर के प्रति सचेत हो जाता है और पूरी तरह से सर्वोच्च ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, उसे इस भ्रम से डरने के लिए और कुछ नहीं रह जाता। ईश्वर भावना भावित व्यक्ति पूरी तरह से शांत व्यक्ति है। हर कोई दुनिया में शांति चाहता है। शांति मार्च करने वाले शांति प्राप्त करना नहीं जानते, लेकिन वे शांति चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक बार बताया कि कैंटरबरी के आर्क बिशप ने अपने भाषण में कहा कि आप ईश्वर के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है। यही हमारा दोष है। अगर हम शांति चाहते हैं तो स्वीकार करें कि शांति का मतलब ईश्वर को समझना है। जो भगवद गीता में कहा गया है, जब तक आप सर्वोच्च भगवान के संपर्क में नहीं होते, आपको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमारे पास एक अलग शांति सूत्र है। वास्तविक शांति सूत्र यही है कि हर किसी को यह पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित भगवान इस सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। वह रूस के भी मालिक हैं, वह चीन के भी मालिक हैं, वह भारत के भी मालिक हैं, हर चीज़ के मालिक। लेकिन क्योंकि हम दावा करते हैं कि हम मालिक हैं, लड़ाई है, कलह है, असहमति है, और ऐसे में शांति कैसे हो सकती है? वास्तव में तो शांति की कल्पना भी ऐसे में मुश्किल है। हर किसी को यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर ही इस जगत का मालिक है। हम आते हैं और जाते हैं, जबकि वह सदा से यहाँ था, है और रहेगा। हम इस विचार में लीन हैं कि यह मेरी भूमि है, या मेरा परिवार है, या मेरी संपत्ति है। और जब ईश्वर का बुलावा आता है, तो जिसे हम अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना शरीर, अपना परिवार, अपना पैसा, अपना बैंक बैलेंस कहते थे, वो सब एक क्षण में चला जाता है। हम भौतिक प्रकृति की चपेट में हैं और वह हमें विभिन्न प्रकार से शरीर दे रही है, और हम आप इस शरीर को स्वीकार करते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मैं शरीर हूँ। दरअसल यही अज्ञानता है, और ऐसे में शांति नहीं मिल सकती। हम सदा से शांति देने के लिए एक दोस्त की तलाश कर रहे हैं। वह सच्चा मित्र आपका ईश्वर ही है। बस उनसे दोस्ती कर लो, आप सभी को अपना दोस्त पाएंगे, क्योंकि भगवान हरेक के हृदय में स्थित है। अगर आप भगवान के साथ दोस्ती करते हैं, तो वह भीतर से आदेश देंगे कि आपके साथ भी दोस्ताना व्यवहार किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप पुलिस कमिश्नर से दोस्ती करते हैं, तो आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति से दोस्ती कर लेते हैं, तो हर कोई आपका दोस्त होगा, क्योंकि हर कोई राष्ट्रपति के अधीन है। बस भगवान के साथ दोस्ती करने की कोशिश करें और हर कोई आपका दोस्त होगा। यदि सभी लोग बहुत अच्छे से इस तथ्य को समझते हैं कि ईश्वर सबका मित्र है और सर्वोच्च मालिक है, तो वे शांत हो जाएंगे। यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी समझाया गया है। भगवद गीता, श्रीमद्भागवतम या किसी भी वैदिक साहित्य या अन्य किसी भी धर्म का कोई भी साहित्य एक ही तथ्य प्रस्तुत करता है कि भगवान मालिक है, ईश्वर ही मित्र है। यदि आप इसे समझते हैं तो आपके पास शांति होगी। यही शांति का सूत्र है।